نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چھوڑا ہے، بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے. اسی لیے کہا گیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی زراعت کرنے کی جگہ ہے، آخرت کی کھیتی کرنے کی جگہ ہے. اور کما تزرعون تحصدون، جیسا بوو گے ویسا کاٹو گے. کہ جو آدمی تیاری نہیں کرے گا تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، ملے گا تو اس کو بھی، لیکن وہ چیز ملے گی جو وہ نہیں چاہتا، جو کوئی بھی نہیں چاہتا، یعنی نقصان ہوگا اس کو. اس لیے اب تعالیٰ شانہ نے ہر انسان کے بارے میں یہ بات فرمایا ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ محنت کرتا ہے، اس کی محنت جاری ہے. جو آدمی کام نہیں کر رہا وہ بھی کام کر رہا ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ کام نہیں کر رہا لیکن آخرت کے اعتبار سے تو وہ کر ہی رہا ہے. بالکل جابلس آدمی ہے، پڑھتا بھی نہیں، بچہ جاب بھی نہیں کرتا، پھر بھی فارغ نہیں ہے کوئی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان حرکتوں کے ہی مجموعے کا نام ہے، حرکت تو کرے گا ہی، اور حرکت کا نام عمل ہے، وہی آخرت کے لیے ہو رہا ہے، یا آخرت کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے یا آخرت کے نقصان کے لیے ہو رہا ہے. ہر حرکت میں انسان کی یہ بات ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادر، اے انسان تو محنت کر رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے. انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اور اس مشقت کے بعد تو اپنے پروردگار سے ملنے والا ہے. تیری قدح جو ہے رب کی طرف ہے، انک قادح الی ربک، اور یہ قدح کوشش کرتے کرتے تیرے رب کی طرف تیرا جانا تجھے تیرے رب سے ملائے گا. ابھی اس کوشش میں یا تو تیرے نام اعمال تجھے دائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں یا تیرے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، نام اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا کہ عرض الحساب، حساب پیش کر دینا کہ یہ تمہارا حساب تم دیکھ لو. وما من نوقش حلقہ، جس کو کھودا جائے گا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، وہ گیا کام سے. جس کو کھودا گیا، کریدا گیا، تفتیش ہوئی، سوال ہوا، وہ گیا کام سے. عرض حساب دیکھ لو، تمہارا حساب دیکھ لو. میں تم تو فاما منوت یہ کتاب ہو بیمینی، نام عمل دائنے ہاتھ میں دیا گیا، ایسی مشقت اس نے کی اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے کہ نام عمل دائیں ہاتھ میں مل گیا تو اس کا حساب آسان ہوگا. وین قلب و الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بہت خوش خوش پلٹے گا، مزہ آ گیا، اپنے نام عمل لے کے بتاتا پھرے گا، دیکھ رہے دیکھ رہے دیکھ رہے دیکھ رہے، جیسے کسی کو ڈپلوما مل جاتا ہے، سند مل جاتی ہے، इनाम मिल जाता है, गिफ्ट मिल जाता है तो दिखाते हैं। वामा मन उठिए किताब हो वरा ज़ाहरी फसोफ यदो सबूरा, बाएं हाथ में अगर नामे आमाल मिल गया तो मौत को पुकारेगा और जहन्नम में दाखिल होगा। ये वो आदमी है जो अपने घर वालों में बड़ा खुश रहता था, इन्नहू काना फी अहलिही मसरूरा, वो पहले वाले को बेचारे को फिक्र रहती थी तो उसको घर में कुछ खुश खुरम मौज मस्तियाँ करने का टाइम कहाँ था, इसको टाइम था जिसको कुछ भी नहीं करना था आखिरत के एतबार। इन्नहू ज़न्ना अल्लन यहूर, उसको गुमान ये था कि उसको अल्लाह की तरफ वापस होना नहीं है, हालांकि उसका परवरदिगार उसको देख रहा है। बला इन रब्बहु काना बिही बसीरा, ये कदह क्या है, यानी हर आदमी अमल कर ही रहा है, मेहनत कर रहा है, वो क्या चीज़ है। इंसान से जो अमल सरजद होता है वो कदह में है, वो हो रहा है काम। मतलब ये है कि एक आदमी के पास आँख है, अब बिल्कुल कोई आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, घर में ही है खाली, किसी काम को नहीं है, काम का नहीं है, पढ़ता नहीं है, जाता नहीं, जॉब नहीं करता, कुछ नहीं करता, आँख खोल के तो देख रहा है ना वो, और जितनी देर तक देख रहा है, जितनी चीज़ों को देख रहा है उतने अमल है ये, जितने को देख रहा है उतने अमल है ये। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितने अमल होते हैं सुबह से शाम तक खाली आँख से। हर अमल में, हर नज़र में या तो अल्लाह उसे खुश हो रहा होता है या नाराज़ हो रहा होता है, उसको अंदाज़ा ही नहीं है, वो समझ रहा जो चाहे मैं देख सकता हूँ, स्मार्टफोन हाथ में ले लिया अब जो चाहे देख रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठ गए, मुख्तलिफ़ किस्म के वेबसाइट खोल लिए, विंडोज़ खोल लिए, देख रहे हैं जो चाहे देख रहे हैं, उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो कदह कर रहा है। अपने परवरदिगार की तरफ जाने की तैयारी है, अब ये इस तैयारी में या तो उसका फ़ायदा हो रहा है या इसका नुकसान हो रहा है। इसीलिए सूफिया कहते हैं कि अपनी देखने को पाक बनाओ, आँखों को पाक बनाना होता है, आँखों की पाकी। अल्लाहुम्मा ताहिर कुलूबना मिनन निफाक व अमालना मिन रिया व अलसिनतना मिन कज़िब व अयुनना मिन खियाना, पाक करना। हदीस में सिखाया गया कि या अल्लाह हमारे दिल को पाक कर निफाक से, क्योंकि निफाक अगर होगा तो दिल में नापाकी है, और हमारे अमाल को पाक फरमा रिया से, अगर अमाल में रियाकारी आएगी तो नापाकी है, अमल गंदा हो गया, और हमारी ज़ुबानों को पाक फरमा झूठ से, झूठ बोलने से, खिलाफ वाकया बात बोलने से, और हमारी आँखों को पाक फरमा खयानत करने से। जब नाहक देखती है आँख तो वह खयानत है, नाहक देखने का मतलब सिर्फ नामहरम को देखना नहीं है, वो भी खयानत है, नामहरम को देखना भी खयानत है। तमा की नज़र से, लालच की नज़र से बिल्डिंगों को देखना भी खयानत है, गाड़ियों को देखना भी खयानत है, लोगों को देखना भी खयानत है। भाई आपको जो चीज़ मिली हुई है उसको खुश रहो, बस ख़त्म, और क्या है, क्या लेना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, अच्छी अच्छी बिल्डिंगों से, अच्छी अच्छी गाड़ियों से क्या लेना है, पैसे अल्लाह ने आपको दिए हैं तो आप भी खरीद लो, नहीं दिए हैं तो पैसे अपना चुप रहो, खामोश रहो, काम में लगे रहो अपने। आँखों की खयानत जो है वो कई किस्म की होती है, दुनिया को अजमत की निगाह से देखना खयानत है, अहमियत की निगाह से देखना खयानत है, दुनिया कोई इज्जत की चीज़ नहीं होती, हकारत की चीज़ है, बेहसी। नबी की नज़र से देखना असल में अमानत है, आँख वही होना चाहिए जो नबी की है, तो हम तो नबी की उम्मत ही हैं, जैसे नबी देखते थे वैसे उम्मती को देखना है, जैसे नबी सोचते थे वैसे उम्मती को सोचना है, जो नबी सुनते थे वो उम्मती को सोचना है सुनना है, जो नबी बोलते थे वो उम्मती को बोलना है, जो नबी करते थे वो उम्मती को करना है। आपको मुसलमान बनाना कोई आसान काम नहीं है, आपको मुसलमान बनाना बहुत आसान बहुत मेहनत का काम है। और आपको जो है अल्लाह तबारक व ताला की महबूब नज़र बना लेना, ये तो और भी मुजाहदे का काम है। सूफिया कहते हैं कि आदमी अपनी नज़र को महबूब बना ले। नज़र महबूब क्या है? नज़र महबूब यह है कि आँख से वही देखे जो अल्लाह तबारक व ताला देखना चाहते दिखाना चाहते हैं, और नज़र महबूब यह है कि आँख हकीकत को देखे। और हकीकत में यह है कि अशिया की जो हकीकत है वह उस पर मुनकशिफ हो जाए। अल्लाहुम्मा अरिना हक़ाइक़ अल-अशिया कमा हिया, या अल्लाह दिखलाइए हमको चीज़ों की हकीकतें जैसी वो हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं वैसी जैसी हमको नज़र आ रही है वैसी नहीं है, वो जैसी हमको नज़र आ रही है चीज़ वैसी नहीं है, हम है कुछ दिख रहा है कुछ हमको, तो वो सही करने का है। जो है वही नज़र आए, इसकी बहुत मेहनत होती है इस पर, तो जो है वो नज़र आना ये काफ़ी मेहनत चाहता है। जो चीज़ें हैं नासिक, थोड़ा सा मैं तसव्वुफ वाला मज़मून छोड़ देता हूँ क्योंकि हम दो दिन से तसव्वुफ पे गए नहीं, आम दर से कुरान की शक्ल में ही चल रहे थे ना, और साथी जो है ना वो मज़ाइन मज़ामीन तसव्वुफ सुनना चाहते हैं, मजलिस की शक्ल नहीं थी असल में, इस वजह से हम दर से कुरान पे चले गए थे। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बारे में फरमाया कि अल्लाह पाक जब इरादा फरमाते हैं किसी चीज़ का, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन, तो फरमाते हैं उससे हो जा, इज़ा अरादा शैयन यकुल लहू कुन फयकुन, वो चीज़ हो जाती है। तो किससे फरमाते हैं? जब इरादा फरमाते हैं किसी चीज़ का तो उससे कहते हैं, किससे कहते हैं? आया वो चीज़ है जिससे बोल रहे हैं? अगर है वो तो उसको बोलने का क्या मतलब है कि हो जा तू? आया वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सो चीज़ को कैसा बोलेंगे, वो मुखातब कैसा बनेंगी? जो बिल्कुल मादूम महज है उस वो मुखातब नहीं बनती, जो है उसको बोलना तहसील हासिल है, फिर किसको बोलते हैं? उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उसको बोलते हैं जो जो अल्लाह पाक के इल्म में है, जो अल्लाह पाक के इल्म में है उसको बोलते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला सिफत इल्म के साथ हैं, जब से हैं जब से वो अलीम है, कभी भी अल्लाह तबारक व ताला इल्म से खाली नहीं रहे, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर सिफत के थोड़ी उन पर कोई टाइम गुजरा है, बहुत बड़ा आयब है उनके वास्ते वो, तो अल्लाह अपनी सिफतों के साथ है। उनकी सिफतों में एक सिफत इल्म की है, तो जो इल्म की सिफत जिसके पास होगी तो मालूमात उसके पास होना ज़रूरी है, नहीं तो इल्म की सिफत क्या क्या माना है? इल्म में मालूमात रहेंगे तो ही वो आलिम है ना भाई, समझ में आ गया? तो अल्लाह तबारक व ताला अलीम हैं, और अल्लाह ताला की जो मालूमात हैं उनको बोलते हैं अल्लाह पाक, उनको हुक्म फरमाते हैं बाहर करने, बाहर यानी उसको मर्तबे आयन, मर्तबे इल्म से मर्तबे आयन में आना कहते हैं उसको, यानी हक ताला शानहु उसको जाहिर फरमाना चाहते हैं जो उनके इल्म में, जो अल्लाह पाक के इल्म मुबारक में है उसको जाहिर करना चाहते हैं। इसलिए सूफिया ये कहते हैं कि बात यहाँ से शुरू होती है कि जितनी مخلوق مخلوق ہے، مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہے، مخلوق پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ چیز ہر مخلوق ہے ان کے پاس، ہر مخلوق کا علم ان کو پہلے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے جانتے ہیں، ایسا نہیں جانتے ہیں بلکہ پیدا کرتے ہیں، پیدا کر کے جانتے ہیں کیا؟ ایک الٹ اپ کچھ بھی بنا دیا اس کے بعد پتا چلا یہ ہے، جن لوگوں کو پکوان نہیں آتا وہ لوگ پکانے کے بعد نام رکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک مؤذن سالن پکاتا تھا، ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کو پہلے پوچھتا تھا، میں پوچھتا تھا اسے کیا بنا رہا بھائی آج سالن، تو بولے کیا اپن پہلے بنا لیں گے بعد میں چکے نام رکھ لیں گے کیا ہے آج کیا بنا، سب ملا کے مسالے ڈالنے کا ہے، وہ کیا بن رہا وہ تو نہیں معلوم، بننے کے بعد مسالے یہ مائکلیا کی ویسا دکھ رہا، یہ قورمے کی ویسا دکھ رہا، یہ سکا سالن دکھ رہا، یہ کھٹا سالن دکھ رہا، اب تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، وہ پیدا کرنے کے بعد جانتے ہیں ویسا نہیں، پیدا کرنے کے بعد بھی جانتے ہیں لیکن جاننے کی وجہ سے پیدا کرتے ہیں، پہلے سے وہ جانتے ہیں، ہر مخلوق کو جانتے ہیں، تو تمام مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہے، تو جو چیز معلوم میں ہوتی ہے وہ چیز کو خارجی وجود نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ثابت الذات مسلوب الوجود، تھوڑی سی تصوف کی زبان بھی استعمال کر رہا ہوں، ثابت الذات مسلوب الوجود، کہ ذات تو ثابت ہے ہر معلوم کی لیکن وجود سے وہ مسلوب ہے، وجود نہیں ہے اس کے پاس، کسی معلوم کے پاس وجود نہیں، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تے کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو حدیث شریف ہے نا، اللہ ایک ایسا وقت تھا کہ اللہ پاک تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، تو پوری کی پوری مخلوق چاہے عرشی ہو چاہے فرشی ہو، آسمانوں کی ہو زمین کی ہو، بڑے بڑے آسمان ہو، چاند سورج ہو، پورے سولار سسٹم ہو، پورے کہکشائیں ہوں پوری ملکی وے ہو، کچھ بھی ہو، گلیکسیز ہوں، جو بھی ہوں، اور یہ آگ پانی مٹی ہوا دریا پہاڑ بادل زمین نباتات جمادات نباتات حیوانات انسان جو بھی ہے، یہ سب کے سب جو ہے نا یہ معدوم ہے، معدوم اضافی بولتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے پاس وجود نہیں ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، جو چیز معدوم ہوگی نا اس کے پاس جو صفتیں ہیں وہ بہت قابل غور ہیں، جس کے پاس وجود نہیں ہے اس کے پاس زندگی کہاں سے رہیں گی، آئی بات سن، جس کے پاس زندگی نہیں ہے اس کے پاس علم کہاں سے ہوگا، اس کے پاس قدرت کہاں سے ہوگی، اس کے پاس سماعت کہاں سے ہوگی، اس کے پاس بصارت کہاں سے ہوگی، اس کے پاس کلام کہاں سے ہوگا، امہات صفات یہ مرکزی صفتیں نہیں ہوں گی تو اس سے ہونے والے برانچز چھوٹی چھوٹی صفتیں اور تو گھر جاؤ گلا جاؤ نہیں رہیں گی، یہ مرکزی صفات کہلاتے ہیں، تو ہماری حقیقت پوری کائنات کو تو رند باد میں وہ ہمارے سے چھوٹی چیز ہے، وہ ہم سمجھ لیے تو وہ تو دوسری چیزیں تو سب چھوٹی ہیں اپنے سے، ہم سب سے بڑے ہیں مخلوقات میں، سب سے اشرف ہیں، سب سے خاص ہیں، تو ہماری حقیقت میں موت ہے، ہم حقیقت میں میت ہیں، وجود ہی نہیں ہے ہمارے پاس، انا نہیں ہے ہمارے پاس، میں پن نہیں ہے اپنے پاس، اسی لیے کبھی بھی ہم اپنا میں نہیں پکڑ سکتے، آپ پکڑ کے بتاؤ، کبھی بھی کوئی آدمی اپنے میں کو دریافت نہیں کر سکتا، پکڑنے سے مراد دریافت نہیں کر سکتے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، بولے یہ میرا ہاتھ ہے، تو جو چیز میری رہتی وہ میں نہیں رہتا، یہ میرا رومال ہے تو میں نہیں ہوا نا، یہ میری ٹوپی ہے تو میں نہیں ہوا، یہ میرا گلاس ہے تو یہ میں نہیں ہوا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میری گردن ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، سمجھ میں آ گیا، اندر چلو، یہ میرا دل ہے، مجھے دل بھی میں نہیں ہوتا، یہ میری روح ہے، یہ میری جان ہے، اس کا مطلب جان بھی میں نہیں ہوتا، آئی بات سمجھ میں، تو میں کہاں ہوں، آپ کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے سوائے صوفیہ کے، صوفیہ ہی پکڑتے اس کو، रुपया ने पकड़ा है, उनको पता है क्या चीज है। तो हमारे पास वजूद नहीं, खुलासा ये बात का। तो हमारे हम मैयत हैं, हम अपनी असल के एतबार से, हमारी असल हकीकत में हम मैयत हैं। और जब मैयत हैं तो हम जाहिल भी हैं, हमारी हकीकत में हम जाहिल हैं। जाहिल है बोलते अपने को गुस्सा आ जाता, अरे भाई जो है वो बोले तो गुस्सा नहीं की क्या बात है यार, सुनना नहीं चाहते अपन अपने को जाहिल बोले। और हम आजिज हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ला हौला वला कुव्वता का मतलब ही है, सब चीज कुरान हदीस में, अपना जहन नहीं जाता उधर, असल में आदमी आजिज है, कुछ नहीं कर सकता, मुज़तर है, इरादा भी नहीं कर सकता। हम जो इरादा करते हुए देखते हैं ना अपने आप को, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मैं दिया हूं तुम्हारे को, वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, तुम नहीं चाह सकते मगर ये कि तुम, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे तुम्हारे चाहने को तो तुम चाहते हो। जब अल्लाह चाहता है कि ये चाहे तो फिर हम चाहते हैं ना, हम नहीं चाह सकते, इरादा हमारे पास कहाँ। ये सब फुरुआत हैं वजूद की, ये सब तफरी है, ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं वजूद की, वही नहीं है अपने पास। तो हमारे पास सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जब हमारे पास देखना नहीं है तो हम अंधे हैं, सुनना नहीं है तो हम बहरे हैं, बोलना नहीं है तो हम गूंगे हैं। तो हमारी हकीकत में गूंगापन है, अंधापन है, बहरापन है, इज़्तिरार है। इज़्तिरार कहते हैं इरादे के अपोजिट को, और इज़ है, इज़ कहते हैं कुदरत के अपोजिट को। और हमारे पास में जहालत है इल्म के मुकाबले में, और मौत है हयात के मुकाबले। अपन इसका मजमुआ है, मखलूक इसका मजमुआ। जब हमारा ये हाल है तो ये बाहर की जो चीज़ें हैं ना, वो बदरजा वाला इस कैफियत से मौसूम है, ये चीज़ उनके पास में भी है। सब चीज़ अल्लाह के इल्म में है, जो चीज़ इल्म में होती है आपके इल्म में, जो चीज़ है उसको उसको वजूद कहाँ रहता है? आपके दिमाग में गाड़ी है, वो दिमाग में से आपकी गाड़ी निकाल सकते, उसको पकड़ सकते, जो बाहर है उसको तो देख सकते हैं, लेकिन दिमाग में आपके इल्म में जो आपके है उसको क्या पकड़े, उसको कहाँ का वजूद है? उसको सिर्फ वजूद है, ज़हनी है, उसको तसव्वुर इल्मी, उसके पास सूरत है, उसके पास क्या है, सुवर इल्मिया बोलते हैं। इसलिए पूरी कायनात की चीजों को अल्लाह ताला की सुवर इल्मिया, इल्मी सूरतें कहते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पास हर मालूम अलग अलग है, तो पहचान के साथ है, तो पहचान के साथ जब ही होगा जब उसकी सूरत रहेंगी, जब उसकी, जब उसका तायुन होगा, जब उसका लिमिटेशन होगा, महदूदियत होंगी, तो दूसरे से अलग होंगे ना भाई, आप नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है, आप आपको भी जानते हैं अल्लाह पहले से, हमको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। तो अगर अपन सब एक ही रहते थे तो अलग कहाँ से होते थे? इसका मतलब अलग से हैं। तो हमारे पास सूरत है अल्लाह पाक के इल्म में, लेकिन वजूद नहीं। और ये जो है ना, जो लोग थोड़ा सा यानी थोड़ा फलसफा वगैरह पढ़े हुए होते हैं, उनके ख्वाबों की चीज़ है ये, उनको समझ वो पकड़ सकते हैं इस मजमून को, कि सूरत अलग करना, वजूद अलग करना। सूरत अलग क्या हुआ? हाँ नहीं, सही बोला उन्होंने, तो उसको ही गर्म करना पड़ता ना। और ये टॉपिक ऐसा है कि आज मैं सिर्फ आधा घंटा बोलूंगा, सोच रहा था कल जाओ ना आप लोगों को, ये टॉपिक जो है ना, ये आधे घंटे का क्या, एक घंटे का भी नहीं है ये, तो उससे भी आगे जाता है। बहुत मुख्तसर कर देंगे, बहुत मजे। ये बात असल में चली कि जो चीज देखने की है हम उसको देख ही नहीं रहे अभी, तो अभी हम जो चीज देखने की है वो हम देख ही नहीं रहे। हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेर है, और जल्दी खत्म करो। वाले साहब का शेर है कि इस बीच है मखलूक में इस बीश है, बीश कहते हैं कि इस कसरत को, इस कसरत में ये सब अफराद ना बहुत सी चीज़ें हैं उनको बीशा कहते हैं। इस बीश है मखलूक में पाले शिकारे ज़ात को, इसमें ज़ात का शिकार कर तू, अपनी नज़र सयाद रख, अल्लाह बस बाकी हवस। अपनी नज़र को शिकारी नज़र रख, नज़र का महबूब बनाने पे बात आई ना, ये नज़र का महबूब बनाना ये है कि खालिक शय को पहचान, देखना दीवार को नहीं दीवार के खालिक को भी साथ में देखना, छत को नहीं छत के खालिक को भी साथ में देखना, आदमी को नहीं आदमी के खालिक को भी साथ। आदमी के पास कुछ भी नहीं है, दीवार के पास कुछ भी नहीं है, अशिया के पास कुछ भी नहीं है, आसमान के पास कुछ नहीं है, सूरज के पास कुछ नहीं है, चांद के पास कुछ नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह है, बिल्कुल सिंपल तरीके पर शरीयत में सब चीज़ समझा दी गई है, लेकिन चूंकि हमारा जहन गफलत का शिकार है, आदि हो गया है, इसलिए जहन पकड़ता नहीं। वरना कुरान पाक में बिल्कुल खुली हुई चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? तारीफ सिर्फ अल्लाह की हो सकती है, चांद की क्यों नहीं हो सकती? हालांकि वो तो चमक रहा है। नहीं नहीं, चांद में चमक चांद की होती नहीं, वो तो अल्लाह की है ना, इस वजह से तारीफ अल्लाह के लिए। सूरज की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? क्यों? इस वजह से कि सूरज के पास जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, वो सूरज का होता ही नहीं। सूरज तो अल्लाह का मालूम है, जिसके पास वजूद ही नहीं था तो ये सब चीज कहां से आएंगी भाई? आई बात समझ? अब इससे अल्लाह पाक की अजमत का अंदाजा करो, वो कितने बड़े हैं, कितने अजीम हैं, कितने कमालात वाले हैं, कितनी खूबियां वाले। जो कायनात की चीज है उसका होना अल्लाह की तरफ से है, और उसमें जो चीज है उसका होना अल्लाह से है, चाहे चांद हो चाहे सूरज हो और चाहे बड़े बड़े उसके ऊपर के जो सैयारे साबित होते हैं जिसमें हजारों लाखों सूरज आते हैं। इस सब इस सूरज के अंदर हमारी 10 लाख जमीनें आ सकती हैं। उसके पास अपना वजूद नहीं था, अल्लाह ने उसको वजूद दिया। उसके पास वो जिया और रोशनी नहीं थी, वो तमाजत नहीं थी, वो अल्लाह पाक ने उसको दिए हैं। वो अल्लाह ही का है तो अल्लाह ने दिए ना उसको, उसके पास तो नहीं है वो चीज़। तो उसके अंदर ऐसी 10 लाख जमीनें आती, कितने ऐसे सैयारे हैं कि ऐसे 10 लाख सूरज एक एक में आते हैं, उनको कायम रखने वाले अल्लाह ही हैं। उनके पास जो चीज है वो होने वाली बात अल्लाह ने की हुई है, और उसके अंदर जो गैसेस हैं ऑक्सीजन जो भी है उसके अंदर जिससे भी है मुरक्कब है वो, उसके अंदर जो चीज है वो अल्लाह पाक की है, वो वही मालिक है उसके, उनके खजाने से दिए सो है वो। इसलिए अपनी हकीकत पर नजर रखना है, और अपनी हकीकत पर नजर रखने के बाद जो चीज नजर आ रही है ना उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना है। अब मेरा होना जो है ना वो अल्लाह से है, मेरी हयात जिंदगी अल्लाह पाक से है, तो जिंदगी मेरे पास अमानत है। ये बोलते हैं ना जिंदगी अल्लाह की अमानत है, तो अगर मेरी रहती तो अमानत कहीं को रहती थी? उनकी है, इस वजह से मेरे पास है वो, इस वजह से वो अमानत है। कुदरत भी अमानत है, इल्म भी अमानत है, जितनी वजूदी सिफात है सब अमानत है। आंखें ये बिनाई जो है ना ये अमानत है, आंखें अलग अमानत है, बिनाई अलग अमानत है, क्योंकि बॉडी अलग नेमत है अल्लाह पाक की, उसके अंदर जो कुव्वतें हैं वो अलग हैं। तो बिनाई अमानत है, सुनवाई अमानत है, गोयाई अमानत है, अल्लाह पाक की अमानत है हमारे पास। और अमानत का इस्तेमाल जो है वो जिसकी अमानत है उसकी मर्जी के मुताबिक ही हो सकता है, नहीं तो चोरी है, नहीं तो खियानत है। इसलिए आपके गलत देखने को खियानत बोलते हैं अल्लाह ताला, यालमु खाइनत अल आयुन, आंखों की खियानत को वो जानता है, क्योंकि अमानत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है आंखें, इसलिए वो खियानत होगी। जुबान भी खियानत करती है, कान भी खियानत करते हैं, हमारा दिल खियानत करता है, हमारा दिमाग खियानत करता है, है उनका अपनी मर्जी से किधर भी चला दे रहे हैं उसको, तो खियानत होगी ना। اس لیے ایمان میں امانت ہے. اس لیے ایمان میں کیا ہے؟ امانت. امانت علی السماوات والارض والجبال. ہم نے امانت آسمانوں پر, پہاڑوں پر, زمین پر پیش کی. فابینا یحملنہا, انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے. واشفقنا منہا, اور ڈر گئے. وحملہا الانسان, ہم نے انسان کو کہا تو لیتا امانت, بولا دے دو. انہو کانا ظلوما جہولا, بڑا ظالم ہے, بڑا جاہل ہے. آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. تو سوچنا تھا کہ امانت ہے, اور وہ بھی اللہ پاک کی امانت ہے. اس کی جواب دہی کہاں سے ہو سکتی؟ آسمان سے نہیں ہو سکتی, پہاڑوں سے نہیں ہو سکتی, زمین سے نہیں ہو سکتی. یہ 6 فٹ کا پدا جو ہے راضی ہو گیا ہو, دے دو میرے صاحب, کیا کیا دینا ہے دے دو, اور جو جو دیتے اور دو, تھوڑا اور دیتے جاؤ, اور یہ دنیا میں آنے کے بعد میں انہوں اور دیتے جاؤ, اور ہوتے جانا میرے کو. اللہ بھی فرما رہے ہیں انہوں کا نا ظلوما جہولا, بڑا ظالم ہے, بڑا جاہل ہے. تو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کو دیکھنا, اور ہر کمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا, اور کائنات کی ہر شے کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا, جو کچھ اس میں قابل تعریف امر ہے, اور جو چیز اس میں قابل تعریف نہیں ہے اس کو, اس سے اللہ کو پاک قرار دینا. ہر شے میں دو کام کرنا پڑتا ہے, ہر چیز میں اللہ کو سبحان بھی بنانا ہوتا ہے, اور یعنی سبحان اللہ بھی کرنا ہوتا ہے, اور الحمدللہ بھی کرنا ہوتا ہے. چونکہ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہے نا, تو اس کے پاس صورت ہے, اور اللہ کے پاس صورت نہیں ہے. اللہ صورت سے سبحان ہے, پاک ہے. تو اللہ تبارک, اسی وجہ سے صورت پرستی نہیں ہے اسلام میں, چونکہ صورت اللہ کے پاس نہیں ہے, چونکہ صورت اللہ کے لیے عائب ہے, چونکہ صورت محدود ہوتی ہے, لمیٹڈ ہوتی ہے, اس میں حد ہے, اس میں تعین ہے, اس میں حدوث ہے, اس میں فنا رکھا ہوا ہے. وہ ایک جگہ ہوگی تو دوسری جگہ نہیں ہوگی, وہ ایک صورت ہوگی تو دوسری صورت اس سے الگ ہوگی. آئی سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت سے پاک ہے. تو جو چیز ہے, جس چیز کی, ہر شے کے پاس میں صورت ہے, اللہ کے پاس صورت نہیں. اللہ پاک صورت سے پاک ہے, تو اسی وجہ سے سبحان اللہ ہے. اسی لیے سبحان اللہ بولنے والا عارف جو ہوگا, وہ اس کا سبحان اللہ اتنا چھوٹا نہیں رہے گا. اس کا سبحان اللہ جو ہے نا, پورے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو لپٹ کے ہوں گا. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. سورج کی صورت سے بھی اللہ پاک ہے, چاند کی صورت سے بھی اللہ پاک ہے, آسمانوں کی صورت سے بھی اللہ پاک ہے, جنت و جہنم کی صورت سے بھی اللہ پاک ہے, جبرائیل و میکائیل کی صورت سے بھی اللہ پاک ہے, فرشتوں کی صورت سے بھی اللہ پاک پاک ہے, سمندر کی صورت سے بھی اللہ پاک ہے, ہواؤں کی صورت سے بھی اللہ پاک ہے, جو چیزوں کی صورت اپنے کو نہیں دکھتی ان کی صورتوں سے بھی اللہ پاک ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ پہاڑوں کی صورت سے بھی. تو اللہ تبارک کو سبحان اللہ جو ہے وہ ایک چھوٹا لفظ نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان, آدھا نام اعمال بھر جا, آدھا پلہ بھر جاتا ہے سبحان اللہ سے. اتنا ثواب ہے اس میں, کہ اس کا بولنے والا پوری کائنات کو لپیٹتا ہے اس میں, صورت سے اور لوازمات صورت سے, خصوصیات صورت سے. ہر صورت کی کچھ خصوصیات ہیں, کچھ آثار ہیں, ان تمام آثار اور خصوصیات سے اللہ پاک ہے. اللہ کو نہیں لگتے ہو. قابلیت امکانیہ جو اس میں ہے, قابلیت فعلیہ اس میں ہوتے ہیں, اس کا جو کسب ہے, اس کو چیز کو لینے کا, اختیار کرنے کی جو صفت اس کے اندر ہوتی ہے, اس کو کسب کہتے ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, وہ اس کو خصوصیات شے بولتے ہیں, لوازمات شے بولتے ہیں. ان سے اللہ پاک کو پاک, اللہ کو پاک قرار دینا ہے. تو صورت اور لوازمات صورت اور خصوصیات صورت سے پاک کرتے ہوئے سبحان اللہ بولنے کا ہے. سبحان, سبحان بہت بڑا لفظ ہے سبحان. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو جملے اللہ کو بہت ہی پسند ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میزان میں بہت بھاری ہیں, जुबान पे बहुत हल्के हैं, रब को बहुत महबूब हैं। तो उसमें क्या बात होंगी आप अंदाजा रहे, उसमें यही बात है, मारिफत का समंदर है, मारिफत का समंदर है ये। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। और साथ ही साथ जब अल्लाह तबारक व तआला सूरत और लवाजिमात सूरत से पाक हैं, तो सूरत में जो खूबी नजर आ रही है वो सूरत के पास नहीं है, सूरत तो खाली है। लाइट की एक सूरत है, लेकिन खुद लाइट में जो रोशनी है वो लाइट की नहीं हो सकती, समझ आ गए ना। दीवार है, दीवार के अंदर जो खूबी है वो दीवार की नहीं होगी। दरख्त है, दरख्त में जो ब्यूटी है वो दरख्त की नहीं होगी। फूल में फूल की जो खूबसूरती और नज़ाकत है वो फूल की नहीं होती, इसलिए फूल की कोई तारीफ नहीं है, फूल बनाने वाले की तारीफ है। फूल की पनखड़ियाँ फूल बनाने वाले का कमाल है, उसकी नज़ाकत फूल बनाने वाले का कमाल है, उसकी खुशबू फूल बनाने वाले का कमाल है। आबशार सीनरी जो पूरी दुनिया की है, कौस कज़ा जो भी है, जहाँ जो खूबी नजर आएगी इंसान में हो, कुव्वत के एतबार से हो, हुस्न व जमाल के एतबार से यानी ब्यूटी के एतबार से हो, या फन के एतबार से हो, या वैसे ही जो है ना नेचर के एतबार से, किसी एतबार से भी खूबी का जो पहलू होगा तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह है, सुभानअल्लाह व बिहम्दी। जब आदमी की नज़र पड़े चीज़ों पर और आदमी के इदराक में ये चीज़ें जिंदा हो तो वो सही नज़र है, ये बोलना चाह रहे थे हमें, अपन वहां चल रहे थे। तो अमल देखना एक अमल है, तो इसलिए इंसान कादह है, इंसान बराबर मेहनत कर रहा है। सुनना एक अमल है, हम खाली रह नहीं सकते, इंसान कुछ भी नहीं करके भी कर ही रहा है, सुन तो रहा है ना, बोलता रहता है कुछ ना कुछ घर में बैठे बैठे, अमल है वो। या तो अल्लाह उससे राजी हो रहे होते हैं या नाराज हो रहे होते हैं, सोच रहा होता है, बातें कर रहा होता है अपने से। वलकद खलकनल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हमने इंसान को पैदा किया है और उसका नफ्स जो बातें कर रहा होता है वो हम जानते हैं। हर आदमी हदीस नफ्स में होता है, अपने से बातें करने में होता है। बाजे तो इतने आदि हो जाते हैं कि बाहर तक उनकी बात सुनाई आ रही होती है, देखा होगा अपने बाजों को बीमारी हो जाती है, वो बोल रहे होते हैं, अपन ये समझते हैं कि उसके कान में आला है, फोन पे है, शायद वो भी नहीं होता बाजों के, मैंने देखा बोले जा रहा। बस ये जो आदमी बीमार नहीं है उन्हें अंदर बोल रहा होता खाली, वह बोलते सब रहे होते हैं। हर आदमी अपने नफ्स से बातें कर रहा होता है, लगा हुआ रहता बातों में, और स्पेशल नमाज में अपन नमाज में इमाम को काम पे लगा देते, अपन शुरू हो जाते, उसके पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, उसे कर्जा वसूल कर रहे हैं, उसको कर्जा दे रहे हैं, ग्रोसरी ला रहे हैं, ये हो रहा है, कभी पकौड़े बन रहे हैं, कभी दही बड़े बन रहे हैं, खाली नहीं रहते। अल्लाह पाक फरमा रहे जो जो कहानी चल रही है वो मैं जानता हूँ। वलकद खलकनल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इसलिए कि हम हब्लुल वरीद से ज़्यादा करीब हैं। शहरग वरीद कहते हैं उन रगों को जो कि दिल जिगर से निकल के जाती हैं, और दिल से निकल के दिमाग को जाने वाली शरियाने होती हैं। तो ये मौकूफ़ हैं उसके ऊपर, वो मौकूफ़ है उसके ऊपर, वो मौकूफ़ है रूह हैवानी पर, वो नफसानी पर, वो रूह इंसानी पर। और अल्लाह तबारक व तआला रूह इंसानी से भी ज़्यादा करीब, हर ऊपर की चीज़ ज़्यादा करीब है, इसलिए अल्लाह पाक हबलुल वली से ज़्यादा करीब है, शहरक से ज़्यादा करीब है। तो अल्लाह पाक क्या चाहते हैं, अल्लाह ये चाहते हैं कि इस दुनिया में जब तक आदमी है उस दिन रह के अपने अपने एक एक अमल को दुरुस्त कर ले और आखिरत के लिए समरावर बनाए, नतीजा खेज बनाए उसको, कि इसका नतीजा आखिरत में अच्छा निकले, इस देखने का, इस बोलने का, इस सुनने का, इस सोचने का, इस चाहने का, इस चलने का, इस पकड़ने का, सब चीज़ों का नतीजा अल्लाह ताला शानहू के पास जो है क्या उत्तर है, 1140 अमानत का इस्तेमाल आ जाए, हमारे पास जो चीजें हैं वो अल्लाह पाक की अमानत है। और तौहीद का कमाल यही है कि जो अपनी चीज़ें वो अल्लाह मियाँ को नहीं देना, जो अल्लाह मियाँ की चीज़ें वो अपनी तरफ मंसूब नहीं कर लेना। सिफात अल्लाह ताला की है ना, हयात, इल्म, इरादा, कुदरत, ये तो उनकी सिफतें अपनी थोड़ी हैं, तो उनकी अपने पास अमानत हैं, तो हम उसको ज़ाती नहीं बना ले सकते अपनी। और जो हमारी हैं, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, रियालत, आजिज़ी, वो अल्लाह को तरफ नहीं लगाने का है, ये कुफ्र हो जाता है। अल्लाह की चीज़ें अपनी तरफ लगाना शिर्क होता है, अपनी चीज़ें अल्लाह की तरफ लगाना कुफ्र होता है। इसी वजह से कहते हैं कि जो अपने को पहचानता है वो रब को पहचानता है। मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। क्योंकि अपने को जब पहचानेंगे तो उसके अक्स से अल्लाह को पहचाना जाएगा, उसका उल्टा करके। हम अपने नक्स के साथ, हम आयब के साथ अपने को पहचानेंगे, कमाल के साथ उनको पहचाना जाएगा। उसी लेवल का कमाल उनके पास है, क्योंकि अब हमारे पास जो कमाल वो नज़र आ रहा है, उनके कमाल का ही तो परतो है वो, उनके कमाल का अक्स है वो, साया है, शेड है। इसलिए मुजद्दिद अल-फ़ुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पूरी कायनात जो है ना अल्लाह के कमालात का शेड है, रुकूस हैं ये सारे के सारे। हर मखलूक, मखलूक का, मखलूक को आईना बना के मखलूक में कमाल डाल के दिखाया जा रहा है। जैसे कशकोल में डालते ना, झोली में पैसा डालते, कटोरे में कोई चीज़ डाल के देते ना, तो मखलूक जो सूरतें रखती है अल्लाह ताला की मुबारक में, उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने अस्मा और सिफात के कमालात रखे, कमालात रख के शो किया है आलम में। और फिर मखलूक को यह समझ दी है कि वो देखे अल्लाह के कमालात को, तो इसलिए अल्लाह पाक अपने अस्मा और सिफात को, अपने कमालात को पहचानवाने के लिए ये दुनिया को बनाया है। ये सिलसिले मारिफत खुदाबंदी है कि मेरा इल्म देखो, मेरी हिकमत देखो, मेरी कुदरत देखो, मेरी रुबूबियत देखो, मेरी हिफाजत देखो, मेरी किबरियाई देखो, मेरी अजमत देखो, मेरी शान देखो, मेरा हुस्न व जमाल देखो, ये मेरी इंजीनियरी देखो, मेरा कमाल देखो। ये पूरी कायनात असल में वो खुद अपने को ही शो करने के लिए है, उनका ही तारुफ है पूरी दुनिया में, और है क्या कायनात पूरी हक़ ताला शान हो के तारुफ ही के लिए है। ये सिलसिले मारिफत खुदाबंदी है। बरग दरख्तान सब्ज दर नजर होशियार, हर वरक दफ्तरेस्त दर मारिफत करदगार। सब्ज दरख्तों के पत्ते होशियार आदमी की नज़र में, हर हर पत्ता मारिफत का एक दफ्तर है, एक पूरी किताब है। ये फरमा रहे हैं बरगे दरख्तान सब्ज दर मारिफत करदगार, हर वरक दफ्तरेस्त बरगे दरख्तान सब्ज दर नजर होशियार, होशियार आदमी की, समझदार आदमी की नज़र में सब दरख्तों के पत्ते, हर वरक दफ्तरेस्त, हर वरक, हर पत्ता एक दफ्तर है दर मारिफत करदगार, करदगार की यानी परवरदिगार की मारिफत में। हर हर शय अल्लाह ताला की मारिफत से भरी हुई है, अल्लाह के कमालात से भरी हुई है, अल्लाह की खूबियों से भरी हुई है। और ये सारे अल्लाह के नाम होते हैं और सारे अल्लाह की सिफतें होती हैं, ये अस्मा व कमालात का मजमुआ है पूरी कायनात। तो जहन ऐसा अंदर से बनाना होता है कि बाहर से ये देखना, जब नजर पड़े आदमी की, बाहर किसी चीज पे आदमी देखे तो दिमाग में अंदर ये चल रहा हो, उसको बोलते सही देखना। ये नजरे महबूब होती है, और आम अपन जो देखते हैं ना, इसको नजरे महजूब कहते हैं, पर्दे वाली नजर है, बेवकूफ है, दीवार को देख के दीवार पे अटक गया, नजरे महजूब, झाड़ को देख के झाड़ पे अटक गया। और इसमें एक नज़र नज़र मजजूब होती है। नज़र मजजूब यह है कि बाद ऐसे लोग होते हैं कि अल्लाह ताला के कमाल को देख के उसमें अंदर जज्ब हो जाते हैं और उनको चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, हक को देखने के, हक का मुशाहिदा कुछ ऐसे अंदाज में हो जाता है उनको कि फिर खल्क का मुशाहिदा नहीं रहता। हक का मुशाहिदा होने के बाद खल्क का यानी मखलूक का मुशाहिदा बाकी नहीं रहता उनके वास्ते, तो वो उधर गए तो उधर ही छो गए, तो मजजूब हो गए। जज्ब के माने खींच जाने के हैं, आबजब हो जाने। तो नज़र मजजूब होती है, नज़र महजूब होती है, नज़र महबूब होती है। नज़र महबूब में यह है कि खल्क का भी मुशाहिदा होता है और हक का भी मुशाहिदा होता है। जो खल्क वाला पहलू है उससे अल्लाह को सुबहान किया जाता है, पाक किया जाता है, और वो हक वाला जो पहलू है उससे अल्हम्दुलिल्लाह ताला की अल्लाह ताला की तहमीद उसमें होती है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो खल्क और हक दोनों का मुशाहिदा होता है, तो ये नज़र महबूब कहलाती है, ये देखना, ये देखने का कमाल है। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अरिना हक़ाइक़ अल-अशियाई कमाही, ये अल्लाह हमें चीज़ें वैसी दिखा दे जैसी वो हैं, क्योंकि चीज़ें हम देख तो रहे हैं लेकिन जैसी हैं वैसी नहीं देख रहे हैं, जैसी देखने चाहिए वैसी नहीं देख रहे, जो उसमें देखने चाहिए वो नहीं देख रहे हम कहा नहीं। अब इसे अंदाज़ा लगाओ हमारे दरमियान कितने पर्दे हैं, हम कितने पर्दों के पीछे जा चुके हैं। तो इस्लाम क्या चाहता है, ये पर्दे हटाना, ईमान जो है ना ये पर्दे हटाने का नाम है, अल्लाह ताला से करीब से करीब, करीब से करीब, करीब से करीब, करीब से करीब हो जाना। तो जब अल्लाह तबारक व ताला के अस्माओ कमालात की पहचान बंदे को हो जाती है और बंदा अल्लाह तबारक व ताला के सामने सरेंडर हो जाता है, बंदगी में आ जाता है, अपनी मर्ज़ी छोड़ देता है और अपनी फनाइत पे आ जाता है और अल्लाह की अजमत को कबूल कर लेता है, अल्लाह पाक का महबूब बंदा हो जाता है। उनके महबूब बनने को देर भी नहीं है और बहुत देर भी है, उनके महबूब उनका रास्ता बहुत दूर का नहीं है, अल्लाह ताला तक जाने का रास्ता बहुत नज़दीक का है, लेकिन अजीब चक्कर है वो तय नहीं होता। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा, बहुत बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा अल्लाह ताला को, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो 100 मरतबा देखा है, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने 4 मरतबा देखा है, उनकी बात में मिलता है। तो कल सुनाया था ना मैंने इमाम अहमद का अल्लाह ताला को देखने का वाक़ा सुनाया ना, अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा, पूछा कि कौन सी चीज़ सब आपको पसंद है, तो फिर आपके क़ुर्ब का ज़रिया है, तो फिर मैं कुरान पाक की तिलावत, तो फिर ये पूछा कि माना के साथ समझ के पढ़ने में है आपका क़ुर्ब बग़ैर समझे के, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि चाहे समझ के पढ़ा जाए चाहे बग़ैर समझे के, बस कुरान पाक का पढ़ना ये मेरे क़ुर्ब का ज़रिया है। इसे ये भी समझ लिया जाए कि कुरान पाक की तिलावत जो है ना वो अपनी ज़ात में मतलूब है, तर्जुमा अलग चीज़ है, बिल्कुल मतलब अलग चीज़ है। अल्लाह के कलाम को नकल करना, अल्लाह के कलाम को नकल करना। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से तशरीफ रखता हूँ, वहीं वहीं बिठाता हूँ। इमाम अहमद को हुजूर पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाब में ये बात बताई। ऐसे हज़रत बायजीद के बारे में आता है कि उन्होंने अल्लाह पाक को ख्वाब में देखा और ये अर्ज़ किया कि या रब्बी दुल्लनी अला अक़रबी तरीक इलैक, ऐ परवरदिगार करीब तरीन जो आपका रास्ता है वो मुझे दिखा दो, हम आपकी तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन जो करीब रास्ता है वो दिखाओ। फरमाया कि बहुत करीब है रास्ता मेरा, मैं दूर थोड़े रहता हूँ। दा नफ्स का वताल, एक पैर जो है ना नफ्स पे रख दो, उसके बाद मेरे पास ही हो बस, तुम अपने नफ्स को छोड़ो और हमारे पास आ जाओ। अब ये है एक ही कदम लेकिन कितना भारी है ये कदम, बहुत वजनी है ये कदम, रखा नहीं जाता अपने से, वही सीखने का है। दा नफ्स का वताल, अपना नफ्स छोड़, नफसानियत छोड़ देना, अपना मंशा, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, इसी के नाम सूफिया के पास फनाइत है। सूफिया के पास फनाइत, फ़ानी हो जाना, अपने को फना कर देना, तसव्वुफ़ की बुनियाद फनाइत पर है, बोलते हैं ना तसव्वुफ़ की बुनियाद किस पर है, फनाइत पर है। क्या मतलब, सुसाइड करने पर है क्या, मर्डर कर लेने पर है? फनाइत का मतलब फनाए इरादा, फनाए मर्जी, अपनी मर्जी को ख़त्म कर देना, अल्लाह ताला की अजमत को इतना पहचान लेना और उनके सामने इतने दब जाना कि साहब आप मेरी क्या मर्जी है, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या चाहूँगा, आप फरमाए बस, जो खिलाए वही मर्जी खा लूँगा, जो पहना है वही पहन लूँगा, जो बोले वो करूँगा, जो ना को ना करने को बोले वो ना करूँगा, जो करने को फरमाएंगे वो करूँगा, बस ये है। पूरी तरीके से अपने को ताबे कर देना, और अल्लाह तबारक व तआला के ताबे करने का बेहतरीन रास्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। क्योंकि जब बंदा ये पूछेगा अल्लाह से कि मैं क्या करूं कि आप खुश हो जाएं, तो इधर बता देते यह है जो करने का है, ये मेरे महबूब हैं, इनको भेजा इसलिए हूं मैं, ये मेरे नुमाइंदे हैं, मेरे मज़हर हैं, मेरे कमालात के मज़हर हैं, मेरी जगह पर हैं, क्योंकि इनका मानना मेरा ही मानना है, इनका नहीं मानना मेरा नहीं मानना है, इनकी इज्जत मेरी इज्जत करना है, इनकी बेइज्जती मेरे की बेइज्जती करना है, इनको खिलाना है मेरे को खिलाना है। हालांकि अल्लाह सुबहान है ना खाने से, मगर ये बोलेंगे कि उनको खिलाया था तूने, मुझे ही खिलाया था, इनको पहनाना है मेरे को पहनाना है। हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला क़यामत में फरमाएंगे कि मैं भूखा था, मैं खिलाया नहीं, तो बंदा कहेगा परवरदिगार आपकी ज़ात पाक है, आप सुबहान है, आप कहाँ खाते हैं? तो अल्लाह फरमाएंगे मेरा फलां बंदा भूखा था, अगर उसको खिला देता तो मैं ये कहता तूने मुझे खिलाया। फलां बंदा यानी हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों में बात हो रही है, अवलिया अल्लाह की बात हो रही, तो हुजूर का क्या मकाम होगा, हुजूर की क्या शान है, आप अंदाज़ा लगाइए। इसीलिए क्या करना है, फनाई फना फिर रसूल होना पड़ता है, फना फिल्ला होने के लिए, फना इरादा के लिए फना फिर रसूल होना पड़ता है। पहले रसूल के सामने अपना इरादा फना करना, अपनी ख्वाहिश फना करना, अपने जज्बात फना करना, जो बोले वो करना, जो उन्होंने पहना वैसे ही पहनना, जो इसे जैसे खाया वैसे ही खाना, जो उनकी सुन्नतें थी वही अपनाना, जो मुस्तहबात हैं वही अपनाना, जो इबादत करने का तरीका उनका था वैसे ही इबादत करना, सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, जो उनकी खुशी का तरीका था वैसी खुशी, जो उनके गम का तरीका था वैसी गम, माशरत मामलात अखलाक सूरत सीरत सिफात सब फनाफिर रसूल। इसलिए शेख का असली काम जो होता है वो फनाफिर रसूल में फनाफिर रसूल करने का होता है, मुरीद को उसको रहबरी ऐसे अंदाज में करना है कि उन्हें फनाफिर रसूल हो जाना, क्योंकि जो फनाफिर रसूल होता है वो फनाफिल्ला होता है, जो फनाफिल्ला हो जाता है वो बाकी बिल्ला हो जाता है, और जो बाकी बिल्ला हो जाता है उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। सप्तस्त बर जरीद आलम दवा में माँ, जरीद आलम पर हमारी हमेशगी साबित हो जाती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि औलिया अल्लाह को बुजुर्गान दीन को वो उस दुनिया से जाके भी दुनिया में रहते हैं, उम्र के भी जिंदा रहते हैं, बला तकुल लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह, यह बात उनकी शान होती है। वैसे ये मजमून भी आया था आज, मैं गया नहीं था उधर, लंबी हो जाती कई बार, मगर फिर हो ही गई। और अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जब वो फनाइत वाली बात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ खास दोस्ती बंदे की हो जाती है, अल्लाह पाक उसको अपना खास बना लेते हैं। एक है विलायत आम्मा जो हर मुसलमान को हासिल है, और एक विलायत खासा अल्लाह की खास दोस्ती, अल्लाह का राजदार हो जाता है वो बंदा, अल्लाह के अहल में से हो जाता है। कुरान वाले कौन होते हैं? अल्लाह के अहल होते हैं, घर का आदमी हो जाता है, अल्लाह के घर का बंदा है, अल्लाह वाला बंदा है। अगर अल्लाह ताला को चैलेंज कर दिया ना, जिद पे आ गया, तो अल्लाह ताला लाज रख लेते हैं उसकी, उसका ऐसा नाज वाला ताल्लुक बन जाता है कि वो तो अल्लाह ताला ने आपको ये करना पड़ेगा वो तो कर देते। हालांकि उनको कौन चैलेंज कर सकता है, वो कादिर मुतलक ज़ात है, वो मालिकुल मुल्क है, वो बादशाहों के बादशाह है, उनकी अजमत उनकी किबरियाई है, उनकी कुद्दूसियत, वो बहुत बड़े से बड़े बड़े से बड़े बड़े से बड़े बड़े से बड़े हैं, वराउल वरा उनकी शान है। मखलूक किसी कोने में किसी हिसाब में नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है उसका, कोई चाहे कोई हो, ऐसी अजीम ज़ात है। लेकिन मामला अपने महबूब बंदों के साथ दोस्तों के साथ बड़ा अजीब रखते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनकी लाज रखते हैं, उनकी दुआ कबूल करते हैं। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और इसको हासिल करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, अल्लज़ीन आमनु व कानू यत्तकून, ईमान में कमाल पैदा करना और तकवे के आदी होना, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है देखा जाए तो। चूँकि सारी नफसानियत में रुकावट डालने वाली चीज़ नफसी तो है ना, सारे तकवे में रुकावट डालने वाली चीज़ ला नफ्स का वताल वाला जो जुमला है वो तकवे पर डाल देता आदमी, मोहतात हो जाता बंदा, परहेजगार हो जाता है, जो चाहिए अल्लाह पाक जिसको पसंद करते हैं वो वही करता है, चाहने से लेकर सोचने से लेकर जज्बात से लेकर मोहब्बत और नफरत में, दुश्मनी और दोस्ती में, सिला रहमी और कतह रहमी में, खर्च करने में, रोकने में, सब चीज़ों में। तो वो रुख पे चले जाना है अपने को, टर्न होके यू टर्न लेके पूरा ये मखलूक से नज़र हटाना, مخلوق کی دوستیوں سے نظر ہٹانا، مخلوق کے تعلقات سے نظر ہٹانا، خالق کی طرف متوجہ ہو جانا، مرنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لینے کا ہے تو کامیاب ہے بندہ، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے، اور مرنے کی تیاری کے واسطے، مرنے کے بعد کی تیاری کے واسطے دنیا میں رکھے گئے ہیں، تو جس چیز کی تیاری کے واسطے رکھے ہوئے ہیں ادھر ہی رخ نہیں ہے، بقیہ صبح ہو رہا ہے اور اچانک موت آ جائے گی. جب موت آئے گی اس وقت آدمی بنا ہوا نہیں ہے، تیار نہیں ہوا ہے، ارے کیا ہوا ادھر، ابھی ہنڈی پکی نہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنا کہ جب آدمی اپنے اوپر محنت نہیں کرتا اور اپنے کو نہیں بناتا اور دنیا بنانے میں لگا رہتا ہے تو بنی ہوئی دنیا باہر رہ جاتی ہے اور بے بنا ہوا انسان اندر اتر جاتا ہے. بنی ہوئی دنیا باہر اور بغیر بنا ہوا انسان اندر اتر گیا. اب وہاں جانے کے بعد اللہ فرشتے بولتے ہیں کہ تو کیا بن کے آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھتے ہیں. وہ کہتا ہے میں بہت بنا کے آیا، بنا کے میں بلڈنگ بنا کے آیا، میں پراپرٹی بنا کے آیا، میں بینک بیلنس بنا کے آیا، میں یہ بنا کے آیا، کمپنی بنا کے آیا، وہ بنا کے آیا. ارے بھائی تم کیا بن کے آئے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو سینے میں کیا ہے وہ نکالا جائے گا. سینے میں کیا بنا ہوا ہے؟ یقین کس کا بنا ہوا ہے؟ کس پر ربوبیت کا یقین بنا ہوا ہے؟ کس کی معرفت ہے؟ کس کی محبت ہے؟ کس کے ساتھ صدق ہے؟ کس کے ساتھ وفا ہے؟ کس کی چاہت لے کے مرے ہیں؟ کس کو خوش کرنے کا جذبہ لے کے مرے ہیں؟ دنیا بھری ہوئی تھی، پیسہ بھرا ہوا تھا، اپنی عزت بھری ہوئی تھی، اپنی امیج بنانا، اپنی شان بنانا، اپنی حماقت بھری ہوئی تھی. کس قدر جب وہ چیز باہر نکلے گی نا تو اتنی گندگی، اتنی سڑاند اس میں ہوں گی کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی سڑی بھی نہیں ہوگی. آدمی خود سے نفرت کرنے لگے. آج وہ چیز دکھ نہیں رہی ہے اصل میں. ماسیو اللہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے غیر کے سارے علاقے اور اللہ کے غیر کے ساری چیزیں جو دل میں بھر جاتی ہیں اور پھنس جاتی ہیں، دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہیں، وہ اتنی گندگی، اتنی اس میں سڑان، اتنی بدبو اور اتنی وحشت اور اتنی تکلیف دینے والی وہ چیز ہوگی کہ آدمی خود اپنے سے نفرت کرے گا اور اپنے ہی کو کاٹے گا. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جب تم یہ کام کرتے تھے مجھے تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ تھا جتنا غصہ تم کو اپنے اوپر اس وقت ہے، مگر میں حلیم ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں بولتا تھا. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم نہیں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ تم پر اس سے زیادہ ہوتا تھا جتنا غصہ تم کو اس وقت اپنے اوپر ہے. قالوا ربنا متنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. ایک مرتبہ نکال دو، ایک مرتبہ چانس دے دو، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس ایک ہی وقت دیا گیا تھا. وہ ایک مرتبہ دے کے تمہارا جو بیج ہے، تمہاری جو کوالٹی ہے وہ باہر آ گئی. اب اگر تم کو 10 مرتبہ بھی چانس دیا جائے تو تم یہی کرو گے، چونکہ تمہارا خمیر ہی وہ ہے. ہوتے ہیں بیج کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، لکڑی کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، پتھر کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ہیرے کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ ہے کیا، میٹیریل ہے کیسا. تو دنیا میں آنے کے بعد یہ میٹیریل ہے کیسا وہ باہر لا گیا ہے. اچھے آدمی، اچھا آدمی اچھا ہونے کی حیثیت سے باہر آیا، اور برا برے ہونے کی حیثیت سے باہر آیا، جنتی جنتی کی حیثیت سے باہر آتا ہے، اور جہنمی جہنمی کی حیثیت سے باہر آ جاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ اگر ہم لو رد العاد الایمان ہوا، اگر ہم دوبارہ اور ایک زندگی ان کو دیں گے نا تو وہی کریں گے، کیونکہ ان کے اندر جو تھا وہی باہر کرے. سو جو اندر ہے وہی نکلے گا. الناؤ یہ ترشا ہوگی معافی، برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. اس لیے بہت اہتمام سے اپنی اصلاح کی فکر اور جد و جہد اور مجاہدہ اور قربانی، روزے کا اہتمام، روزے میں روزوں کی حقیقت بنانے کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، تقویٰ و پرہیزگاری اور سنت کی زندگی، سنت کو فالو کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو کا کمال سیکھنے کی کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بنانا، ان کو یاد کرنا، ان کی یاد میں لذت اور حلاوت محسوس کرنا، ان کی یاد کے لیے طبیعت کو آمادہ کرنا، جبر کرنا، ذکر کرو بول کے آدھے گھنٹہ ذکر کرو آدھے گھنٹہ نہیں ہو رہا حضرت بولتے، طبیعت کو یہ بولنا کہ ابھی اگر تیرے سے آدھے گھنٹہ ذکر نہیں ہوتا تو تو چاہ کیا رہا ہے، आधा घंटा भी तो अल्लाह को याद नहीं करना चाहता, तो फिर चाहता क्या है, कोई बात हुई है? यानी ऐसे अंदाज में अपने नफ्स को गुस्सा करना और चपाटे लगा देना। तुम्हारा रजी अल्लाह तआला नो एक मरतबा उनके एक दूसरे उनके खादिम उनके घर गए तो देखा अपने कोड़े से अपनी पिंडली को मार रहे थे, अपने कोड़े से अपनी पिंडलियों को मार रहे थे। साहब किराम कैसी नजर रखते थे, वो किस बात पे सजा देते थे कि अपने को मार रहे थे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नो जुबान में ऐसा मुंह में ऐसा बड़ा पत्थर रख के बैठे हुए थे। एक दूसरे साहबी उनसे मिलने गए तो बोले मुंह में ये क्या है, तो बोले ये पत्थर है। तो बोले कई को रखे हुए, बोलते इन हाजा और दनिल मवारिद, यही तो जुबान है जो मेरे जा बेजा निकल जाती है और फिर मसले पैदा होते हैं। बोले इस वजह से इसको बंद करके रखने के वास्ते पत्थर रख दिया हूँ मैं, बोल रहा हूँ। सिद्दीक अकबर हैं, अमीर उल मोमिनीन हैं, कैसे उन लोगों को एक एक अमल के ऊपर एहतमाम था। तो वो है अपनी ज़ात को फोकस करना इस्लाह के लिए कि मैं सही हो जाऊँ, मेरी सिफत सही हो जाए, मेरे नफ्स का तज़किया हो जाए, मेरे अखलाक दुरुस्त हो जाए, मेरा अमल सही हो जाए, मुझे अल्लाह पसंद फरमा ले। तो सुबह कल जॉब है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुम अल्लाह।